Vaikhanasa Valakilyo Vaikhanasa Valakilyo Dumbarafena Pavane Nyase Kuti Chakah Purvam Bahavodohansa Nishkriyo. अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा. अनुवाद. वानप्रस्थ जीवन की चार श्रेणियां हैं, वैखानस, वालखिल्य, औदुम्बर और फेनप. जीवन में संन्यास आश्रम के चार वर्ग हैं, कुटीचक, बहवोद, हंस और निष्क्रिय. ये सब ब्रह्मा से प्रकट हुए थे. तात्पर्य. वर्णाश्रम धर्म अर्थात वर्ण और आश्रम की संस्था जैसा अल्पज्ञों का कथन है, आधुनिक युग का नवीन आविष्कार नहीं है. यह एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में की थी. गीता के चतुर्थ अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम. अनुवाद को दोहराइएगा. हरे कृष्णा. वानप्रस्थ जीवन की चार श्रेणियां हैं, वैखानस, वालखिल्य, औदुम्बर और फेनप. जीवन में संन्यास आश्रम के चार वर्ग हैं, कुटीचक, बहवोद, हंस और निष्क्रिय. ये सब ब्रह्मा से प्रकट हुए थे. तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म की संस्था जो है, ये आधुनिक युग की नवीन आविष्कार नहीं है, ये बहुत प्राचीन है. लेकिन जो अल्पज्ञ हैं वो सोचते हैं कि ये इस युग का एक आविष्कार है. जब प्रभुपाद जी रूस देश में गए थे, रशिया में, तो उनकी भेंट एक अध्यापक, एक प्रोफेसर से हुई, प्रोफेसर कोटोवस्की. बहुत सारी बात, लंबी चौड़ी बातचीत की उन्होंने उनके साथ में, और प्रभुपाद जी बड़े हैरान हो गए उनके साथ में बात करने के बाद में, क्योंकि ये जो प्रोफेसर हैं ये इंडोलॉजी के प्रोफेसर थे. मतलब जो भारतवर्ष की संस्कृति है उसमें वो विशेष उनका ज्ञान था, ऐसे उनकी डिग्री वगैरह थी. लेकिन उनका कथन था कि मृत्यु के पश्चात सब खत्म हो जाता है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है. तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ये बड़े बड़े पीएचडी लोगों ने, बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं, पीएचडी डॉक्टर बने हैं, लेकिन फिर भी उनको इतना नहीं मालूम कि आत्मा नाम की कोई चीज है. तो यही प्रोफेसर कोटोवस्की इस चर्चा के दौरान बता रहे थे कि ये जो वर्णाश्रम धर्म की बात आप कर रहे हैं, ये तो अभी अभी इसका आविष्कार हुआ है. वैसे अगर आप अन्य ग्रंथ पढ़ेंगे तो पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं था. फिर अपने भौतिक जो संशोधन से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके हिसाब से कहने लगे, जैसे हड़प्पा की संस्कृति थी और उसमें तो ऐसा नहीं था. इस प्रकार से भौतिक दृष्टि से ये वर्णाश्रम धर्म के बारे में वो कुछ कहने लगे. तो प्रभुपाद बताने लगे कि वर्णाश्रम धर्म का कोई इतिहास नहीं है. वर्णाश्रम धर्म बहुत प्राचीन है, काल से भी पूर्व. वास्तव में ये वर्णाश्रम धर्म सनातन है. सनातन क्यों है? क्योंकि ये भौतिक तत्व सनातन है. हाँ, ये भौतिक सृष्टि जो है इसका सृजन होता है, पालन होता है, फिर नाश होता, विनाश होता है, फिर से सृजन होता है, पालन होता है, विनाश होता है, ये चक्र घूमता रहता है। लेकिन ये चक्र तो सनातन है, और जब तक ये भौतिक सृष्टि रहती है तब तक वर्णाश्रम धर्म रहता है। भगवान ने ये वर्णाश्रम धर्म विशेष करके ये भौतिक संसार के लिए बनाया है। भगवान के धाम में वर्णाश्रम धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। भगवान के धाम में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, ना ही तो ऐसा कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ, ऐसा कोई भेदभाव भगवान के धाम में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां सब वैष्णव हैं, वहां सब भगवान के भक्त हैं, और वैष्णव जो है वो वर्णाश्रम धर्म के परे होते हैं। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य यह है कि हम किसी न किसी प्रकार से वैष्णव के स्तर तक पहुंच जाएं, है ना। विष्णु आराधनम परम, यही वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेन परह पुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारणम, कि वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है विष्णु आराधनम, है ना। और जब तक हम विष्णु आराधना के स्तर में नहीं पहुंचेंगे तब तक वर्णाश्रम धर्म की परिपूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए सारे जो वर्ण हैं, सारे आश्रम हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, और वो है भगवान को प्रसन्न करना। अतः पुंबे द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्। हरितोषणम् अर्थात श्री हरि की संतुष्टि के लिए ये वर्ण और आश्रम बनाए गए हैं। ये वर्ण आश्रम इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति की मानसिक अवस्था, बुद्धि की अवस्था, शारीरिक अवस्था, उनकी जो प्रवृत्तियां हैं वो अलग अलग होती हैं। इसलिए इनको देखते हुए भगवान ने ये विभाजन किए हैं, और इन विभाजन करने से हम जब हमारे सही भाग में, हमारे सही वर्ण और सही आश्रम में स्थित होकर उस वर्ण और आश्रम के क्रियाओं के, निहित कार्यों के हिसाब से अगर हम कार्य करेंगे तो धीरे धीरे से हम भगवान की भक्ति के करीब पहुंच सकते हैं। ये उद्देश्य है। इसलिए भगवान के धाम में वर्णाश्रम धर्म नहीं है, केवल ये भौतिक संसार में वर्णाश्रम धर्म है। तो जब भी ये वर्णाश्रम धर्म, ये भौतिक संसार रहता है तब तक ये वर्णाश्रम धर्म रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब सृष्टि का नाश होता है तो वर्णाश्रम धर्म क्या लुप्त हो जाता है, क्या खत्म हो जाता है, उसका भी क्या नाश हो जाता है? नहीं। जिस प्रकार से वेदों का निर्माण क्यों किया गया है, वो भौतिक संसार के लिए किया गया है। वेद शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म का ना तो कोई उसकी कोई शुरुआत है, ना तो कोई अंत है। लेकिन जब भौतिक संसार का सृजन होता है तो ये शब्द ब्रह्म जो वेद है उसको एक रूप दिया जाता है, जिस प्रकार से ऐसे प्रकार से कि हम सब उसको समझ सकें, उसका श्रवण कर सकें। तो जब ये वेद इस संसार में प्रकट होते हैं उसी समय वर्णाश्रम धर्म भी प्रकट होते हैं। जब ये ब्रह्मांड का निर्माण होता है तो ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है तो सारे जो भी चीजें ये ब्रह्मांड में आवश्यक हैं उनका भी निर्माण होता है। जैसे ये 14 भुवन हैं, नाना प्रकार के ग्रह हैं, लोक हैं, ये 84 लाख योनियां हैं, और जो भी चीजें यहाँ आवश्यक हैं ये 84 लाख योनियों को रहने के लिए ठीक से, उन सब चीजों का भी निर्माण होता है। और इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं किस प्रकार से ब्रह्मा जी से ये सारे चीजें उत्पन्न हो रही हैं। जैसे अलग अलग प्रजापति महर्षि भी ब्रह्मा जी के अलग अलग शरीर के अंग से उत्पन्न होते हैं। कोई कान से आते हैं, कोई उनके बुद्धि से आते हैं, कोई उनके जिह्वा से आते हैं, नाना प्रकार के शरीर से अंग से चीजें उत्पन्न होती हैं। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी से ये वर्ण और आश्रम की संस्था भी प्रकट होती है। जब वर्ण और आश्रम की संस्था प्रकट होती है इसका मतलब क्या है कि ये सारे जो नियम हैं इनका निर्माण होता है कि ब्रह्मचारी आश्रम में क्या करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में क्या करना चाहिए, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, ये सारे नियमों का निर्माण होता है। इसलिए ये वर्णाश्रम धर्म कोई नई बात नहीं है। ब्रह्मा जी का जन्म जब हुआ था उस समय से इसकी शुरुआत है। तो देखिए कितने हजार करोड़ साल पहले की बात है। और ये कोटस की साहब कहते हैं कि ये आधुनिक जमाने की ये आविष्कार है, तो ऐसी बात नहीं है। और ये वर्णाश्रम धर्म ब्रह्मा जी से नहीं शुरुआत होती है, हर एक ब्रह्मांड का जब सृजन होता है उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी से शुरू होता है, अर्थात ये सनातन है, ये है वर्णाश्रम धर्म। इसलिए प्रभुपाद कहते थे हम वर्णाश्रम धर्मी हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले। और ये वर्णाश्रम धर्म स्वाभाविक है, ये संसार में नेचुरल चीज है और ये सर्वव्यापी है मानव समाज में। जहां भी आप देखेंगे आप वर्णाश्रम धर्म को देखेंगे, चाहे वो एक ढके हुए अवस्था में हो या चाहे वो स्पष्ट रूप में प्रकट हो हमारे सामने। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे जैसे सूरज है, सूरज तो हमेशा रहता है आकाश में, जब बारिश का मौसम होता है तो घने बादलों से कभी कभी सूरज ढक जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज नहीं है। सूरज की रोशनी ढक जाने पर भी फिर भी थोड़ी बहुत रोशनी तो आती है, दिन के समय भी हम देख सकते हैं कि हालांकि इतने सारे बादल हैं, क्यों? क्योंकि सूरज है। तो उसी से और जब बादल नहीं होते हैं तो फिर अच्छी तरह से हम सूरज को देख सकते हैं, सूरज की रोशनी जो है अपने पूर्ण शक्ति से जो है हम देख सकते हैं, इसको प्रकट हो जाती है यहाँ पर संसार में। तो उसी प्रकार से पहले सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर में ये वर्णाश्रम धर्म ऐसे था जैसे बिना बादल के आकाश जिसमें सूर्य जो है चमक रहा है। वर्णाश्रम धर्म पूरी तरह से स्थापित था और सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से कार्य किया करते थे। लेकिन जैसे कलयुग प्रवेश कर चुका तब से हम देखते हैं कि बादल आने लगे हैं, और अभी इतने घने बादल आ गए हैं कि कोई यह कह नहीं सकता कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है। कलौ शूद्र संभव है, सब लोग शूद्र हो गए हैं। किसी को देखकर आप समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि यह कौन सा वर्ण का है, कौन सा आश्रम का है। तो इसलिए ये आश्रम में, ये कलयुग में सब ढक गए हैं, सब सारे वर्ण और आश्रम, लेकिन फिर भी वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम कभी भी नष्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये सनातन है। जिस प्रकार से वेद लुप्त हो सकते हैं लेकिन नष्ट नहीं हो सकते, उसी प्रकार से वर्णाश्रम धर्म भी वेदों के सहित में ब्रह्मा जी से उत्पन्न होता है, इसलिए वर्णाश्रम धर्म का नाश भी कभी नहीं हो सकता है। और किस प्रकार से मानव समाज में ये सर्वव्यापी और सनातन है, इस बात की पुष्टि हम थोड़ा सोच कर भी कर सकते हैं। ऐसे समाज को भी देखिए जो नास्तिक समाज है, जैसे रूस देश में जो पहले जमाने में जो कम्युनिस्ट लोग थे वो नास्तिक समाज था, लेकिन फिर भी ऐसे समाज में लोग हैं जो थोड़े अकलमंद होते हैं, जो कवि हैं, दार्शनिक हैं, शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, ऐसे प्रकार के लोग तो है ही थे ही वो समाज में, तो वो ब्राह्मण है। और ऐसे भी लोग हैं जो सेना में थे, सेनापति हैं और देश को चला रहे हैं, तो वो क्षत्रिय हैं। और ऐसे लोग हैं जो व्यवसाय कर रहे थे, व्यवसाय जो है वहां कम है और ज्यादा जो उत्पादन में लगे हुए हैं, फैक्ट्री में, कारखाने में इत्यादि, तो ये सब शूद्र हैं। तो उस जमाने में रूस ज्यादातर शूद्रों का देश था, प्रभुपाद ऐसे समझाया करते थे। ये कम्युनिस्ट देश मतलब शूद्र का देश, और ये कैपिटलिस्ट मतलब ये जो हिंदी को क्या बोलते हैं कैपिटलिस्ट को, साम्यवाद, मतलब जो ज्यादा बिजनेस के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं कि हम सब आप सब व्यवसाय कीजिए, सब पैसे कमाइए, तो ये वैश्यों का समाज है। तो प्रभुपाद बताया करते थे कि अमेरिका जो है वैश्यों का समाज है और रशिया जो है वो शूद्रों का समाज है। हालांकि ज्यादातर ये कलयुग में सब शूद्र ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े मात्रा में वैश्य भी हैं, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं है। तो वैश्य और शूद्र ये सब चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण का हम क्या है वो झमक, झमक कहते हैं क्या, झलक देख, झमक नहीं सॉरी झलक, ब्राह्मण का झलक देख सकते हैं किसी में है, ये पढ़ाना चाहता है, शिक्षा करना देना चाहता है ना, ये ब्राह्मण के गुण धीरे धीरे है लेकिन ढक गए हैं बहुत घने बादलों से। तो इस प्रकार से सारे मानव समाज में ये वर्णाश्रम धर्म का अस्तित्व है, केवल कहीं जगह ढक गया है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। और भगवान बताते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, तो ये भगवान का निर्माण है, भगवान की सृष्टि है, जो भगवान की सृष्टि है उसका नाश कैसे हो सकता है। तो वर्णाश्रम धर्म क्यों बनाया भगवान ने, इसलिए कि हम सब ये मानव समाज में रहते हुए धीरे 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 से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें, ये संसार से निरासक्त हो जाएं और मनुष्य जीवन के फल के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएं। ये सब क्रम से शनै शनै होता है, इसलिए चार वर्ण और चार आश्रम बनाए गए हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर एक व्यक्ति एक ही दिन में जीवन के परिपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए बहुत प्रशिक्षण चाहिए, बहुत धीरे धीरे से इसका ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये चार वर्ण बनाए गए हैं जिससे लोग अपना अपनी कमाई कर सकें, और फिर ये चार आश्रम हैं जिनसे हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकें। अब यहाँ पर विशेषतः आश्रमों की बात की गई है इस श्लोक में, और विशेषतः वानप्रस्थ और सन्यास। लेकिन वानप्रस्थ और सन्यास को समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि ब्रह्मचारी और गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है। अगर ये हम नहीं समझेंगे तो वानप्रस्थ सन्यास भी नहीं समझ पाएंगे। हर एक आश्रम के कर्तव्य होते हैं। संक्षेप में अगर इन चार आश्रमों के कर्तव्यों के बारे में व्याख्या की जाए तो वो इस प्रकार है। ब्रह्मचारी आश्रम में मुख्य कर्तव्य है वेदों का पाठ करना और गुरु के आज्ञा का पालन करना। गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचारी जीवन में और कोई चीज नहीं होता है, ये दो चीज है। गृहस्थ जीवन में तीन प्रकार के कार्य होते हैं, मुख्य कार्य। एक कार्य है दान देना, दूसरा कार्य है यज्ञ करना, और तीसरा कार्य है इंद्र तृप्ति के लिए नियमित दौर से वो नियमों का पालन करना। गृहस्थ आश्रम में इंद्र तृप्ति के लिए थोड़ी बहुत छूट दी गई है, लेकिन जो नियम है उनके सीमा के भीतर। तो इन नियमों का पालन करते हुए इंद्र तृप्ति करना, ये गृहस्थ आश्रम में अलाउड है। अर्थात गृहस्थ आश्रम में तीसरा जो कर्तव्य वो है कि ये जो नियम है उनका पालन करना। ये तीन कर्तव्य होते हैं गृहस्थ आश्रम में। और वानप्रस्थ आश्रम में क्या कर्तव्य है, वानप्रस्थ आश्रम में कर्तव्य है तपस्या करना। सबसे बड़ा कर्तव्य तपस्या करना, शास्त्रों का अध्ययन और गहराई से करना, और प्रभुपाद बताते हैं थोड़ा दार्शनिक संशोधन करना, फिलोसॉफिकल रिसर्च करना, ये वानप्रस्थ के कर्तव्य हैं। और सन्यास के भी कई कर्तव्य होते हैं। सबसे प्रमुख होता है कि जगह जगह जाकर वेदों के वाक्यों को, भगवान के बारे में सबको प्रचार करें, फिर अपने ही अस्तित्व को शुद्ध करना। कैसे, अपने सन्यास आश्रम के नियमों को पालन करने से। जैसे सन्यासी के लिए नियम है कि महिलाओं से संग नहीं करना, तो ये एक नियम है अपने शुद्धिकरण के लिए। तो इस प्रकार से कई नियम होते हैं जिनका सन्यासी को पालन करना पड़ता है। इस प्रकार से चारों आश्रमों में अलग अलग नियम बताए जाते हैं। जब व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में होता है तो उसको ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त होता है, जैसे मुख्यतः ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण, जिससे वो आगे अगर गृहस्थ आश्रम में भी जाना चाहे तो इंद्र भोग को अपना जीवन का लक्ष्य नहीं समझेगा। जीवन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करेगा। अर्थात ब्रह्मचारी आश्रम जो है वो अगले जीवन के लिए तैयारी है, यह आश्रम मतलब हर आश्रम अगले आश्रम के लिए तैयारी है और संन्यास आश्रम मृत्यु के लिए तैयारी है। इस तरह से हमेशा ये वर्णाश्रम धर्म में हम भविष्य के लिए तैयारी करते हैं, तैयारी करना आगे के लिए। देखिए कितना सुंदर तरीका बनाया है भगवान ने। हर कदम पे हम भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं सिस्टमेटिकली, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अच्छे तरह से ब्रह्मचारी का उसे प्रशिक्षण नहीं मिलता है तो अच्छा गृहस्थ उसके लिए बनना मुश्किल है, तो फिर वो गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन अच्छी तरह से नहीं कर सकेगा। तो जो लोग और खास करके उसे ज्ञान भी प्राप्त होता है वेदों का, वो समझ जाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, एक प्रकार का संयम, एक डिसिप्लिन उसके अंदर आ जाता है ब्रह्मचारी के अंदर, जिससे कि फिर वो इधर उधर भटक नहीं जाता है। और ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात जो ब्रह्मचारी गृहस्थ में प्रवेश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहते हैं और आखिर में आगे चलकर संन्यास ले लेते हैं। लेकिन जो लोग गृहस्थी में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी अलाउड है, छूट है, और गृहस्थी में रहकर फिर वो अच्छी तरह से इन नियमों का पालन करते हैं 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 साल के बाद में जो गृहस्थी में प्रवेश करना चाहते हैं वो प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो ब्रह्मचारी जीवन आगे बनाए रख सकते हैं, और 25 साल के बाद में 25 साल तक और गृहस्थ आश्रम का पालन, और धीरे धीरे हर समय ये तैयारी करते हुए कि जब मैं 50 साल के करीब का हो जाऊंगा तब घर को छोड़ना होगा। पंचशोर्धम वनम व्रजेत, 50 साल की उम्र हो गई कि वन में प्रस्थान करना है, वानप्रस्थ ये है। तो किस प्रकार से धीरे धीरे से वन में प्रस्थान करके जीवन की जो आसक्ति है उसको कम करना, और वानप्रस्थ में फिर से किस प्रकार से संन्यास के लिए तैयारी करना। देखिए कितना सुंदर सिस्टम है ये, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग सबके लिए। तो ये वानप्रस्थ जो आश्रम है वो 50 साल की उम्र में लेना चाहिए सबको, क्योंकि 50 साल में बुढ़ापे की शुरुआत होने जा रही है, फिर भी बुढ़ापा आया नहीं है। ये ऐसी अवस्था है, जवान भी नहीं है बूढ़े भी नहीं है, इस अवस्था में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बुढ़ापे के लिए इंतजार करें, क्यों नहीं, भागवत में बताया जाता है बहुत एक स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि बुढ़ापे में हमारी क्या परिस्थिति होती है। हमारा शरीर बिल्कुल दुर्बल हो जाता है, शरीर का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो जाता है, कुछ खा नहीं सकते, खाते भी तो थोड़ा थोड़ा कुछ खा लेते हैं, शरीर इतना दुर्बल हो जाता है कि हम दूसरों के ऊपर हर चीज के लिए निर्भर हो जाते हैं, और हर कदम पे हम यही देखते हैं कि हमें कोई सम्मान नहीं देता है, परिवार में कोई हमें ध्यान नहीं देते, निग्लेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से बूढ़े बुढ़ापा में लोग उदास हो जाते हैं और केवल मृत्यु के लिए वो अपेक्षा, मृत्यु की अपेक्षा करते हैं। यहां तक बताया जाता है कि वो एक गृहपाल है, एक पालतू कुत्ते के समान घर में रहना पड़ता है उसको, जिन व्यक्तियों को उसी ने पालन किया था, पालन पोषण किया था, वही व्यक्ति अब उसका पालन पोषण करते हैं, और जो भी वो चीजें थोड़ा बहुत कुछ देते हैं उसे स्वीकार करना पड़ता है, उनकी कृपा में वो रह जाता है। बुढ़ापा एक दूसरा बचपन कहलाता है, बुढ़ापे में भी व्यक्ति जो है वो एक बच्चे के समान बन जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बहुत कमजोर बन जाता है, मन से भी कमजोर, शरीर से भी कमजोर, बुद्धि से भी कमजोर, बहुत बुरी दशा हो जाती है उसकी। और ऐसी अवस्था में भी उसकी पारिवारिक आसक्ति बनी रहती है, इतना परिवार में उसको लोग ठुकराते हैं, कोई सम्मान नहीं देता, लोग इंतजार इतना ही करते हैं कि कब इसकी मृत्यु हो जाए, इसका जायदाद हमें कब मिल जाए, लेकिन फिर भी पारिवारिक आसक्ति छूटती नहीं है, अपने परिवार के साथ में अंत तक रहना चाहता है, और यहां तक ये आशा करता है कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो बड़ा जुलूस निकालकर एक वो लोग मुझे जुलूस में ले जाएंगे और ऐसे सब सजा हुआ होगा मेरा शव, और फिर बड़े धूमधाम से मैं जो है मेरा वो श्राद्ध मनाया जाएगा, इतने सारे लोग आएंगे, इतने सारे अनुष्ठान होंगे मेरे सम्मान में। हालांकि उस समय वो होगा नहीं वहां उसे देखने के लिए, शैया पे उसका शरीर लिया जा रहा है तो वो तो नहीं होगा देखने के लिए, लेकिन फिर भी चाहता है। तो आखिरी दम तक वो अपने घर में रहकर अपने पारिवारिक आसक्ति को त्यागना नहीं चाहता है। हालांकि इतना दुख मिलता है उसको, हर दिशा से उसको अपमान किया जाता है, फिर भी घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। शास्त्रों में क्या बताया है? शास्त्रों में बताया है कि घर में कभी मरना नहीं चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए। ऐसे अवस्था में छोड़ना चाहिए जब हमारा स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ठीक है, हमारी बुद्धि थोड़ी बहुत है, और ऐसे जगह जाना चाहिए जहां किसी को पता नहीं हो हमारे परिवार में कि हम कहां गए हुए हैं, और ऐसे एक अनजाने जगह में मर जाना चाहिए। ये सबसे महान मृत्यु है। महान मृत्यु क्या है? ऐसी मृत्यु जहां हमारे परिवार के सदस्यों को पता न हो कि हम कहां मर गए हैं, कहां चले गए और कहां मर गए कुछ मालूम नहीं, संबंध पूरी तरह से काट कर हम चले गए, ये है मृत्यु। तो ऐसे जीवन हमें जीना चाहिए, इसलिए ऐसे अवस्था की तैयारी के लिए वानप्रस्थ है। ऐसे नहीं कि बुढ़ापे तक हम बैठे रहें, 50 साल हो गए कि बस निकल पड़ो घर से। इसलिए हर एक भक्त को तैयारी करनी चाहिए इसके लिए। अब यहां वैष्णव समाज में अभी वानप्रस्थ का मतलब है हमारे इस्कॉन संस्था के लिए सारा समय दे देना, मतलब अपना घर परिवार, अपना जो बच्चों को संग दूर हो जाना, काट देना, और अपने घरेलू मामलों में ज्यादा नहीं पड़ना, व्यवसाय के मामले में नहीं पड़ना, और केवल जो है भगवान की भक्ति के लिए, श्रवण कीर्तन के लिए, प्रचार के लिए बस सहायता करना, और कोई भौतिक कार्य नहीं करना। इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो वन में प्रस्थान करना है। अब यहां वन तो कलयुग में तो है नहीं, और वन में कोई जाएंगे भी तो किसी को रहने का साहस भी नहीं होगा वहां, तो ये आजकल के जमाने में प्रैक्टिकल नहीं है। तो वन में प्रस्थान करने का यह भी मतलब है कि पूरा समय भौतिक जीवन से रिटायर होकर आध्यात्मिक जीवन में लगाना, और जैसे हमारे इतने सारे मंदिर हैं, इन मंदिरों में हम सेवा कर सकते हैं। तो यह है वानप्रस्थ जीवन। तीर्थ यात्रा भी करना चाहिए वास्तव में वानप्रस्थ जीवन में, अलग अलग जगह जाकर शुद्धिकरण करना, और वानप्रस्थ जीवन में जैसे पहले बताया गया था तपस्या करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में थोड़ा बहुत जो है आराम हमने अनुभव कर व्यक्ति कर लेता है, तो इससे थोड़ा दूर होने के लिए अभी वानप्रस्थी में ज्यादा तपस्या करना पड़ता है, और फिर ये तपस्या करने के बाद में फिर धीरे धीरे पति पत्नी जब साथ में रहते हैं, पत्नी भी पति के साथ देते हैं तपस्या करने में, जहां भी जाती हैं दोनों एक साथ में जाते हैं, और पति तपस्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और पत्नी उनकी सेवा करती है। जो तप पति करते हैं वही तप पत्नी को भी करना पड़ता है। भागवत में कितने सारे उदाहरण हैं ऐसे, जैसे धृतराष्ट्र जब वो गए तो गांधारी भी उनके साथ में गई, उनके साथ में वैसा ही तप किया। पृथ्वी महाराज, उन्होंने जब अपना घर परिवार त्याग दिया, राज्य को त्याग दिया, वो अपनी रानी अर्ची देवी को लेकर वो भी वन में गए, और पृथ्वी महाराज तप करते थे, अर्ची महारानी भी वहां तप कर रही थी, और ये बताया जाता है कि अर्ची महारानी जो एक महारानी थी, कहां का वो सोने चांदी के बीच में रहती थी, लेकिन यह वन में आकर वन के जमीन में मिट्टी में सोती थी, और बिल्कुल फटे हुए कपड़े पहनती थी, और जड़ी बूटी जो भी मिलते हैं फल फूल उनसे पेट भर लेती थी, और यहां तक अपना बाल भी वो कोम को क्या कहते हैं कंघी नहीं लगाती थी। बताया जाता है कि स्त्री वर्ग में बाल को ठीक कर ये करना बहुत एक दिनचर्या में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, हर रोज करना पड़ता है, लेकिन वानप्रस्थी में जब जाते हैं महिला तो फिर वो नहीं करती है, वन में रहती है। क्योंकि ये बाल जो होते हैं ना, ये सौंदर्य के एक लक्षण होते हैं और शारीरिक आकर्षण का एक अंग होते हैं, इसलिए पुरुष ज्यादातर तो महिला जब वानप्रस्थ में जाती है तो कंघी नहीं लगाती है ताकि बाल जो है बिल्कुल क्या कहते उसको जम जाते हैं बिल्कुल, और कोई भी उसके प्रकार तरह से आकर्षित नहीं होता है, पति भी आकर्षित नहीं होता और खुद उसके हृदय में भी आकर्षण नहीं रहता है। तो इस प्रकार से पति पत्नी जो है वो यौन संबंध से धीरे धीरे से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में पति पत्नी साथ में रह सकते हैं लेकिन कोई उनका संग नहीं होना चाहिए। तो संग नहीं होना चाहिए तब ये संभव है, तब आकर्षण कम हो जाएगा तब हो सकता है, इसलिए ये सब नियम बताए गए हैं। दोनों अगर इस प्रकार से तप करेंगे तो वानप्रस्थ जीवन में वो धीरे धीरे से उनके भौतिक आसक्तियां कम हो जाएंगी, वैराग्य की भावना बढ़ जाएगी, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी। और जब ऐसे दोनों उन्नत हो जाते हैं इस मार्ग में, फिर पति को जब अच्छी तरह से वो ज्ञान में उन्नत हो जाते हैं तो पत्नी को कहते हैं अभी आप घर चले जाओ, पत्नी को घर भेज देते हैं वो, और अपने बड़े पुत्र के साथ में रहते हैं पत्नी, और उनके घर में रहकर सारे परिवार को मार्गदर्शन करते हैं और अच्छा उदाहरण पेश करते हैं कि कैसे धर्म के अनुसार हमें जीना चाहिए। संसार में रहते हुए घर में रहते हुए भी घरेलू मामलों से वो थोड़ा बहुत दूर रहती हैं और धर्म में सबको ट्रेनिंग देती हैं कि कैसे घर में रहना चाहिए, और फिर पति जो है वो वानप्रस्थ से वो संन्यास ले लेता है और फिर चले जाता है। और एक बार जब संन्यास ले लेता है तो किसी को पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गया है, कहाँ है, क्या कब मरा नहीं मरा, किसी को नहीं मालूम होता है। ये है संन्यास। संन्यास का मतलब है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, सिविल सुइसाइड, मतलब समाज के नियमों के भीतर आत्महत्या। वैसे आत्महत्या तो समाज के कानून के खिलाफ है, शास्त्रों के कानून के खिलाफ भी है और हमारे आधुनिक समाज के कानून के खिलाफ भी है, शरीर की हत्या करना। लेकिन जब संन्यास लेता है तो ऐसा है कि जैसे वो संसार के लिए मर गया, अभी संसारी कोई नियम नहीं, कोई ऋण नहीं, कोई जिम्मेदारियां नहीं, कुछ नहीं, अभी केवल भगवान उनके बीच में, बस घूमना फिरना प्रचार करना यही एक कार्य होता है, सिविल सुइसाइड इसे कहते हैं। तो इसके लिए वानप्रस्थी तैयार हो जाता है और फिर आगे चल के यहां वहां प्रचार करते रहता है। तो यहां बताया जाता है कि ये वानप्रस्थ और संन्यास के चार श्रेणियां होती हैं, क्योंकि वानप्रस्थी में भी जाते हैं तो लोग क्रमशः इसकी प्रगति होती रहती है। जैसे ये चार आश्रम है जिसमें हम प्रगति करते रहते हैं, ये आश्रमों में भी प्रगति के लिए श्रेणियां बताई गई है, क्योंकि अचानक जो वन में प्रस्थान करता है गृहस्थ जब वन में जाता है तो अचानक उसको ये सब करने के लिए कठिन होता है। उसी प्रकार से वानप्रस्थ से संन्यास लेता है तो अचानक सब संन्यास आश्रम के नियमों का पालन करना कठिन हो जाता है, इसलिए क्रम से ये सब करने के लिए ये चीजें बताई गई हैं। यहां बताया जाता है, ये इनकी व्याख्या की है प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ में, कि वानप्रस्थ का जो पहला स्तर होता है वो है वैखानस। इसमें क्या है कि पूरी तरह से वो सक्रिय जीवन से, मतलब संसारी जीवन से वो दूर हो जाता है और उसकी तपस्या क्या है, आधे उबले हुए भोजन पर जीवन यापन करना, आधा उबला हुआ बिल्कुल है? ये खाता है। तो इस प्रकार से तपस्या के लिए धीरे धीरे ट्रेनिंग लेने लगता है। और आगे क्या है, वालखिल्य। वालखिल्य का मतलब क्या है कि जो उसके पास अन्न है अगर और कुछ मिल जाता है तो इसको त्याग कर उसको ले लेता है। कहने का मतलब क्या है कि अभी जो है हमारे पास उसको रख लिया, जो आया उसको भी रख लिया, उसके बाद में जो आया उसको भी रख लिया और ज्यादा से ज्यादा एकत्र करने को लगा को करने को शुरू कर लिया, वैसा नहीं। जो अब आया उसे स्वीकार करो और उस पर संतुष्ट रहो और जो है उसको त्याग दे दो। तो अर्थात धीरे धीरे से भगवान के ऊपर कैसे निर्भर होना चाहिए इसके लिए ट्रेनिंग हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है, अभ्यास हो रहा है। तो ये है वालखिल्य। इसके बाद में तीसरा स्तर है औदुम्बरा। औदुम्बरा में हम देखते हैं कि जिस दिशा में बिस्तर से उठ जाता है और चलने लगता है, उस दिशा से जो भी प्राप्त होगा उसे स्वीकार करेगा, और अगर नहीं मिला तो फिर नहीं लेगा कुछ। ऐसा नहीं कि भोजन के लिए इधर गया, फिर उधर नहीं मिला तो इधर गया, उधर नहीं मिला तो और कहीं गया और कहीं घूमने घूमते फिरते इधर उधर, नहीं। जिस दिशा में उठे, पूरब की ओर उठे तो पूरब की ओर चलते रहना, और पूरब की ओर जाकर फिर पूरब की दिशा में जो भी मिले वो स्वीकार करना। यह है औदुम्बरा। और फिर आखिरी है फेनपा। फेनपा मतलब जो स्वयं से जो फल से गिरते हैं, पतित हो जाते हैं फल जो पेड़ से, उनको स्वीकार करना। ऐसा नहीं कि पेड़ के ऊपर चढ़ के फिर उसको ले लें, जो भी स्वयं गिर जाते हैं उन पे अपना जीवन यापन कर लेना। देखिए यह है वानप्रस्थ। ये बहुत कठिन है। तो खैर वानप्रस्थ के लिए जब अच्छी तरह से कर लेते हैं फिर संन्यास आश्रम की तैयारी हो जाती है। और संन्यास आश्रम में भी अचानक से वो परिव्राजक आचार्य नहीं बन जाते हैं। क्या होते हैं? पहले होते हैं कुटी चकर, कुटी कुटिया, छोटी सी कुटिया बना लेते हैं। कहाँ बना लेते हैं? वो गांव के थोड़ा बहुत बाहर, गांव के भीतर नहीं, गांव से बहुत दूर भी नहीं, गांव के बिल्कुल बाहर एक कुटिया बना लेते हैं। और उस कुटिया में वो व्यक्ति रहता है, पत्नी से दूर लेकिन फिर भी घर से भोजन आता है, टिफिन आ जाता है, क्योंकि अभी तक वो आदत नहीं हुई है जड़ी बूटियों ये वो सब करने के लिए। खाया, ट्रेनिंग तो मिला है वानप्रस्थ में, फिर भी थोड़ा बहुत अभी पक्के नहीं हुए हैं, परिपक्वता नहीं आई है, इसलिए घर से कभी कभी भोजन आ जाता है। इसको कुटीचक कहते हैं। अभी जो चार संन्यास के वर्ग बताए यहाँ पर, ये एक प्रकार से एक दृष्टि से बताए हुए हैं। अन्य जगह भागवत में और एक वर्ग बताया हुआ है, जो उसका हम चर्चा आज करेंगे। तो कुटीचक के बाद में आता है बहुदक। बहुदक में यह होता है कि घर से भोजन आना बंद हो जाता है और वो माधुकरी करता है। माधुकरी का मतलब जैसे वृंदावन में बाबा जी करते हैं, थोड़े जगह घर घर से जाकर थोड़ा कुछ लेना, ज्यादा नहीं, थोड़ा हर एक घर से लेना, और जब एक आदमी के लिए खाने के लिए इतना काफी हो जाता है तो फिर घूमना बंद, जाके अपना भोजन करके अपना कार्य करो। ये माधुकरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मधुमक्खी ऐसे जाती है। मधुमक्खी जब एक फूल से दूसरे फूल जाकर अमृत पान करती है ना? तो मधु, ये मधु के से आया है माधुकरी। जिस प्रकार से मधुमक्खी मधु प्राप्त करती है उसी प्रकार से माधुकरी करते हैं बहुदक में। तो कुटीचक बहुदक। और फिर इसके बाद में परिव्राज का आचार्य, फिर वो घूमने फिरने लगते हैं सब जगह, और एक ही कार्य उनका होता है, और वो क्या है? प्रचार करना। सब जगह जाके इधर उधर घूम के भगवान की वाणी को वो दोहराते हैं, लोगों का उद्धार करने के लिए जाते हैं संन्यास आश्रम में। और उसके बाद में परिव्राज का आचार्य के स्तर के और भी ऊंचे पहुंच जाते हैं, फिर घूमना फिरना बंद कर देते हैं और फिर परमहंस की अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं और एक जगह में बैठकर अपना भजन चालू कर देते हैं। फिर केवल भगवान की प्राप्ति के लिए बस बैठे रहते हैं, फिर घूमना बंद, फिरना बंद, प्रचार बंद। यह है परमहंस की अवस्था। यहां बताया जाता है कुटीचक, बहवोध, हंस और निष्क्रियो। थोड़े अलग ढंग से इसको समझाया गया है बस। निष्क्रियो मतलब अभी कोई कार्य नहीं करता, जैसे परमहंस स्तर में। यहाँ हंस बताया गया है जो लौकिक क्रियाकलाप का त्याग कर दिव्य भक्ति योग में पूर्ण प्रवृत्ति हो जाना। तो कहने का मतलब है संन्यास आश्रम किस लिए है? केवल भगवान की प्राप्ति के लिए है, भगवान की सेवा के लिए है, भगवान के प्रचार के लिए है, और कोई उद्देश्य नहीं होता। वास्तव में दो प्रकार के सन्यासी होते हैं, एक है मायावादी सन्यासी, एक है वैष्णव सन्यासी। मायावादी सन्यासी, उनका एक डंडा होता है, क्योंकि एक डंडे से वो कहना चाहते हैं कि मैं भगवान में लीन होना चाहता हूं। लेकिन वैष्णव सन्यासी को त्रिदंडी गोस्वामी कहते हैं, मतलब तीन डंडे होते हैं। तीन डंडे से क्या प्रकट होता है, प्रतीत होता है? काया, मन, वाचा। कि अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वचन से वो पूरी तरह से भगवान को शरण में जाते हैं, उनसे भगवान की सेवा करते हैं। और एक वैष्णव डंडा, संन्यास डंडा में एक चौथा भी होता है इस प्रकार से, आपने देखा होगा डंडा होता है, डंडे को लगाकर एक ऐसा हुक जैसा होता है, वो चौथा माना जाता है डंडा, और वो आत्मा का प्रतीक, आत्मा को संबोधित करता है, मतलब आत्मा का भी समर्पण भगवान के लिए है? तो ये वैष्णव संन्यास है। इसके वास्तव में त्रिदंड संन्यास ही सच्चा संन्यास है, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए किया जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि दो प्रकार के परमहंस होते हैं, एक को कहते हैं ब्रह्मानंदी और दूसरे को कहते हैं प्रेमानंदी। ब्रह्मानंदी मतलब जो लोग ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं, वो परमहंस है। और ये परमहंस है प्रेमानंदी, जो भगवान की सेवा करके भगवत प्रेम में लीन हो जाते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। एक दृष्टि से दोनों परमहंस हैं, लेकिन जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती है भागवत में, परमहंस का मतलब है भक्त, जो प्रेमानंदी है वो वास्तव में वो परमहंस होते हैं। तो इस प्रकार से वानप्रस्थ जीवन में और संन्यास जीवन में ऐसे क्रम से उन्नत होने का चांस दिया जाता है। वास्तव में ये चार जो आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास, रफली देखा जाए तो हरेक आश्रम 25% समाज के हैं। समाज के 25% ब्रह्मचारी होते हैं स्टूडेंट्स, 25% गृहस्थी होते हैं, 25% वानप्रस्थी, 25% सन्यासी, ऐसे होने चाहिए समाज में, प्रभुपाद ऐसे बताते हैं। और ये 100% मानव समाज में 75% लोग, कितना कहते 75 मतलब क्या 75, हाँ सॉरी 75% जो समाज है उनका एक ही कार्य है, तप करना, अध्ययन करना, भगवान का भजन करना। ब्रह्मचारी में क्या काम है, ब्रह्मचारी आश्रम में खुद कोई पैसा जाके नहीं कमाता अपने लिए, कोई नौकरी नहीं करता है, कोई बिजनेस नहीं करता है, केवल अध्ययन करना, प्रचार करना, सेवा करना गुरु की, बस। वानप्रस्थ जीवन में भी तपस्या, संसारी व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं, संन्यास में तो और भी दूर बात है इसकी। तो केवल गृहस्थ आश्रम में लोग पैसा कमा सकते हैं, हाँ तो अर्थ अर्जन कर सकते हैं। तो ये गृहस्थ आश्रम जो 25% है उनका कर्तव्य है कि 75% जो समाज उनको मेंटेन करें, क्योंकि अन्य जो 75% लोग हैं उनको भगवान की सेवा के अलावा और कोई टाइम नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि 25% लोगों को, अर्थात गृहस्थ आश्रम के लोगों को 75% लोगों को मेंटेन करना चाहिए। यह है वर्णाश्रम धर्म। प्रभुपाद बताते हैं संक्षेप में, आपको जानना है कि वर्णाश्रम धर्म क्या है तो यही बात है, 25% ऑफ द सोसाइटी मेंटेन्स द रेस्ट ऑफ द 75%, 25% समाज बाकी 75% समाज को मेंटेन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेंटेन करते हैं और बाकी 75% खाते पीते सोते हैं, ऐसा नहीं, उनको अपने अपने कार्यों में लगना चाहिए। और फिर गृहस्थ जो है प्रेरित हो जाएंगे कि वो मेंटेन करें उनको। लेकिन आजकल सब उल्टा हो गया है, ब्रह्मचारी का प्रशिक्षण आजकल किसी को नहीं मिलता है स्कूल में, कॉलेज में, ब्रह्मचारी की बात तो एक ऐसी दूर बात है जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े हो, देख रहे हैं कुछ दिख रहा है, दिखे न दिखे, कौन ब्रह्मचारी के बारे में सोचता है आजकल स्कूल में, कॉलेज में, कोई नहीं सोचता है, कोई ट्रेनिंग नहीं मिलता है, कुछ नहीं। तो जब गृहस्थी हो जाते हैं तो इंद्र तृप्ति का जीवन बिताने के लिए सोचते हैं कि यही इंद्र तृप्ति के लिए ही हमें ये ऐसा जीवन मिला है, गृहस्थ हम गृह में ही बन रहे हैं। तो फिर डिग्री के कागज के टुकड़े के हिसाब से नौकरी बिजनेस वगैरह करते हैं, पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाने की सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंद्र तृप्ति हो। और इसलिए अन्य तीन जो आश्रम है उनको दान देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए कलयुग में ये सब चीजें उल्टी हो गई हैं। लेकिन वैसे देखा जाए वर्णाश्रम धर्म ऐसा होता है, इतना परफेक्ट सिस्टम भगवान ने बनाया है। हरे कृष्णा। आपके कोई टीका, टिप्पणी, प्रश्न इत्यादि? प्रश्न ये है कि भागवत में अगर हम पढ़ेंगे तो ब्रह्मचारी सन्यासी का वर्णन अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा बताया है कि उनको बाल लंबे लंबे होने चाहिए, दाढ़ी बाल काटना नहीं चाहिए, और पेड़ के वो क्या कहते हैं बार्क को, छल, चमड़े, वृक्ष के चमड़े को पहनना चाहिए और ये सब करना चाहिए, और हम तो सर मुंडवा लेते हैं। ये कब से ऐसा सिस्टम चालू हुआ और क्यों? वैसे देखा जाए तो कलयुग में ये चीजें ज्यादातर नहीं की जाती है। जैसे हम हमारे वैष्णव सन्यासी देखेंगे, सब रामानुजाचार्य देखिए, मध्वाचार्य देखिए, सब अपना सर मुंडवा लेते थे। चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसे कर लिया क्योंकि बाल ज्यादा लंबा बाबा जी लोग बढ़ा लेते हैं क्योंकि उनको प्रचार नहीं करना होता है। लेकिन जो भी प्रचार के कार्य में लगे रहते हैं वो निकाल लेते, क्योंकि लंबे चौड़े बाल दाढ़ी बाड़ी सब ले जाएंगे, लोग घबरा जाएंगे, कोई प्रचार सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। और फिर ये एक अस्वच्छ अवस्था है, बाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पसीना आ जाता है, सब गंदा हो जाता है, तो प्राणी भी अंदर सब छुप बैठ जाते हैं, और कंघी भी नहीं लगाते हैं तो और भी गंदा हो जाता है। तो इसलिए दो कारणों के लिए, एक है स्वच्छता के कारण से और दूसरा है प्रचार के कार्य से, आजकल हम ये मुंडवा लेते हैं। लेकिन दोनों वैराग्य की निशानी है, या आप सर मुंडवा लीजिए या बढ़ने दीजिए, दोनों वैराग्य की निशान है, दोनों प्रामाणिक है। लेकिन आजकल के जमाने के हिसाब से हमारे आचार्यों ने ऐसे हमें करने के लिए कहा है, तो देश काल पात्र के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। अगर आप आज सड़क पे वो झाड़ के पेड़ के वो चमड़े को लेकर घूमेंगे तो आपका प्रवचन कोई नहीं सुनेगा, लोग आपके बारे में देखें, लोग सोचेंगे कौन है ये, कहां से आया, जंगल से आया आदमी, कोई सुनेगा नहीं आपकी बात। तो देश काल पात्र के हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ता है, ये सारे चीजें डिटेल्स हैं, लेकिन मुख्य सिद्धांत जो है वो है वैराग्य, गुरु की सेवा, शास्त्रों का अध्ययन, ये सब चीजें बनाए रखनी है। प्रश्न है कि वैकुंठ में भी तीसरे स्कंद में वर्णन आता है कि वैकुंठ के निवासी अपने पत्नियों के साथ में विमान में घूम रहे हैं इधर उधर, तो वहां भी आश्रम धर्म होगा। देर इज गृहस्थ आश्रम इन द सेंस दैट देर इज मैरिड लाइफ, बट इट इज नॉट दैट, सॉरी हिंदी में जवाब देंगे, वैकुंठ में भी पारिवारिक स्थिति है, लेकिन ऐसे नहीं है कि ब्रह्मचारी फिर आपको गुरु के आश्रम में रहना है, तपस्या करना है। वैकुंठ में क्या तपस्या है, वैकुंठ में तो आनंद ही आनंद है, और वहां से फिर आप गृहस्थ में जाएंगे, फिर वानप्रस्थ में जाएंगे, फिर सन्यास में जाएंगे, ऐसे नहीं है। वैकुंठ में सन्यास नहीं है, वानप्रस्थ नहीं है कोई, और होते हैं वैसे वैकुंठ के निवासी तो सनातन गृहस्थ होते हैं, पहले से भी वो पारिवारिक अवस्था में थे और अभी भी है और हमेशा हमेशा रहेंगे, और वैसे युव अवस्था में रहते हैं, और उनकी जो उनका जो पारिवारिक जीवन है वो उसके बीच भगवान को केंद्र बनाकर ही करते हैं, खुद का भोग नहीं करते हैं, वो आपस का भोग नहीं करते हैं, दोनों केवल भगवान की सेवा के लिए इस अवस्था में हैं। कि ब्रह्मचारी को माता पिता की सेवा करनी चाहिए कि नहीं? ब्रह्मचारी के माता पिता की सेवा अवश्य करना चाहिए, लेकिन प्रश्न है कि कौन है माता कौन है पिता, है ना? गुरु पिता है, वेद माता है, तो माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इन्होंने जन्म दिया है, जो ब्रह्मचारी फिर से गृहस्थ बन जाता है उसे फिर ये जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो हमेशा ब्रह्मचारी ही रहता है फिर उसे ये जिम्मेदारी उसके ऊपर इसके लिए अनिवार्य नहीं है। और एक दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति घर छोड़कर ब्रह्मचारी बन जाता है, अपने परिवार से जरूरत से ज्यादा संबंध रखता है, तो उसके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर से वो पारिवारिक जीवन की ओर आकर्षित हो जाएगा, अपने जो पूर्व आश्रम के जो भौतिक आसक्तियां थी अपने माता पिता के प्रति, जो आसक्तियां हैं वो फिर से आ सकती है शरीर में, मन में, और फिर उसकी भक्ति में बाधा बन सकती है। हाँ जी जगदीवन प्रभु। हाँ क्या चीज? प्रश्न ये है कि शास्त्रों में बताया है कि गृहस्थों को मेंटेन करना चाहिए ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास, लेकिन आजकल गृहस्थों को खुद को मेंटेन करना मुश्किल हो जा रहा है, तो अन्य को क्या मेंटेन करें? यही बता रहे थे कि यही सब उल्टा पुल्टा हो गया आजकल के जमाने में, है ना। ये जीवन का संघर्ष इतना बढ़ गया है कि हर एक आदमी को अपना भी देखभाल करना वो बड़ी मुश्किल बात हो गई है। लेकिन फिर भी ये सिद्धांत रह जाता है, दान गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ा कर्तव्य है। एक बार प्रभुपाद जी ने पूछा, पिछली बार भी बता रहे थे, एक बार प्रभुपाद जी ने को किसी ने शिष्य ने पूछा कि गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ा कर्तव्य कौन सा है, क्या करना चाहिए गृहस्थ आश्रम में। प्रभुपाद ने बताया गृहस्थ आश्रम में जाकर आदमी को बाहर जाके पूछना चाहिए, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, और भूखा है तो बुलाकर खिलाना, ऐसे नहीं कि बुलाकर दलदली से दरवाजा बंद करके अंदर आ जाना, फिर खिलाना पिलाना फिर उसको जाना। अर्थात दान, दान ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दान की भावना होनी चाहिए जितना हो सके। तो अगर हमारी आमदनी कम हो तो उतना ही हमारा जीवन को सरल बनाना चाहिए। लेकिन आजकल आधुनिक जीवन में समस्या क्या है, आमदनी कम है लेकिन हम रहना चाहते हैं, वो हमको टीवी भी चाहिए और वो सिनेमा भी चाहिए, और यहां भी घूमना चाहते हैं वहां भी घूमना चाहता है। समाज में देखिए लोग कैसे तीन चार हर जगह हर बेडरूम में टीवी चाहिए, है ना। तो ऊंचा जीवन जीना चाहते हैं तो फिर दान के लिए पैसा कहाँ से होगा। इसलिए प्रभुपाद जी पता करते थे कि आजकल क्यों ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग नहीं मिलता है तो गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए लोगों को ये ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए इंद्र तृप्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, कुछ रहता नहीं है दान के लिए, है ना, ये हो जाता है। और भौतिक जीवन होने की वजह से, भगवान को दूर रखने की वजह से जीवन का संघर्ष बढ़ता जाता है। यह प्रकृति का नियम है, जितना आप भगवान को केंद्र बिंदु से दूर हटाएंगे उतना आपको संघर्ष करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, और उस हिसाब से दान के लिए कर पैसे कम रह जाएंगे। लेकिन जितना भी हो सके देखना चाहिए प्रैक्टिकली। शास्त्रों में बताया है 50% पैसा देना चाहिए, 25% समाज के जो गृहस्थ हैं उनको अपना 50% इनकम आमदनी देनी चाहिए दान में। You see, this is a question of time, place, circumstance in a preaching mission. जैसे एक युद्ध होता है, जब युद्ध होता है तो ये इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है। इमरजेंसी में किसान के हाथ में बंदूक लेके उसे भेजा, चलो जाओ गोली चलाओ, वैसे परफेक्ट सिचुएशन नहीं है लेकिन इस वक्त आवश्यक है। और परिस्थिति को देखते हुए एक युद्ध है, सामने अग्नि है, अग्नि को बुझाना है पहले। तो इसी प्रकार से ये अभी संस्था को आगे बढ़ाना है समाज में, ये इमरजेंसी है। 99% समय समाज अंधकार में है, ये प्रचार हमें करना है हर जगह, जहां से भी योग्य व्यक्ति मिलते हैं, जहां से भी जो अपना जीवन समर्पण करना चाहते हैं भगवान की सेवा में, अगर कोई तैयार है सेवा करने के लिए आओ। तो इसलिए इमरजेंसी अवस्था में ऐसे किया जाता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन आगे 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 जैसे जैसे हमारा हमारी संस्था आगे हो सके, इसके लिए 100 साल लगे, 200 साल लगे, आती हुई पीढ़ियां जब वर्णाश्रम को अच्छी तरह से सेटल कर पाएंगे हमारे समाज में, फिर आस्ते आस्ते सारी चीजें सेटल हो सकती हैं। लेकिन जब तक इमरजेंसी रहेगा, अभी कई सालों तक इमरजेंसी रहेगा, ऐसा नहीं लगता है कि इमरजेंसी बहुत जल्दी से चली जाने वाली है। इमरजेंसी की व्यवस्था कई सालों तक रहेगी, तब तक जो भी आवश्यक है हमारे समाज में उसके लिए हमें करना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जय।